के लिए जो
18% लोगों ने अभी फॉर द टाइम बीइंग, अगर अभी का आप देखें ना
जी,
क्योंकि सिर्फ दो दफा बढ़ाया अभी उन्होंने, तो 18% अभी
कह रहे हैं कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते,
अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ये दो दफा और बढ़ा देंगे तो देन इट्स गोइंग टू बी अ बिट मोर,
बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल। अच्छा जनाब, स्टैट्स कनाडा की ये खबर है, और स्टैट्स कनाडा की ये खबर जो है जरा थोड़ा सा गौर से सुनने की बात है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम है वो गिरी है 182.5% से।
दैट
इज ह्यूज मजद भाई,
ह्यूज।
तो इसका मतलब है लोग कमा ही नहीं रहे हैं बेचारे, तो वो पे कैसे करेंगे? तो वही जो पहली न्यूज है उसके साथ ये इंटरलिंक्ड है फिर।
एग्जैक्टली
हाँ,
तो क्योंकि वो जो है वो आप जितना भी कर लें, आप जितना पैसा कमा रहे हैं उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं।
एग्जैक्टली।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी
अच्छा, इसकी इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं स्टैट्स कनाडा ने, वो कह रहे हैं एवरी डॉलर जो आप कमा रहे हैं
हाँ जी,
उसके अगेंस्ट आप 1.83 डॉलर्स का आपके ऊपर क्रेडिट है।
एग्जैक्टली
यू सी, तो डॉलर से ज्यादा आप जो है वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कि हाउस होल्ड डेट जो है वो भी अब 2% को टच कर रहा है, और इसके अलावा 3.3% जो है वो, हालांकि गेन्स आए हैं इनकम के अंदर, लेकिन फिर भी वो स्पेंडिंग पावर से जो है वो बहुत कम है।
तो उसका जो इफेक्ट होता है वो सारी इकोनॉमी पे हो रहा है।
हाँ जी,
क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड द मनी, इफ आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड द मनी तो वो मनी जो है रोल नहीं हो रही,
नहीं हो रही है इकोनॉमी में। हाँ
एग्जैक्टली exactly. तो अगर मेरे पास $5,000 पड़ा हुआ है तो आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट टुमारो कि whether should I spend this $5,000 या ये कि होल्ड इट फॉर द बैड टाइम बिकॉज nobody knows what's going to happen tomorrow।
हाँ हाँ बिल्कुल माजिद भाई, और देखें ये सारी चीजें आप की वाली बात है कि ये सारी चीजें इफेक्ट है। जैसे अब वही बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन लाइक मी, आपके तो माशाल्लाह बच्चे अब पढ़ गए हैं, मेरा जो बच्चे है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वो पढ़ाई के स्टेज में है ना
exactly. माजिद भाई,
तो अब मेरे पास जो पड़े हुए हैं पैसे, मैं सोचूंगी कि भई एजुकेशन पे लगाने हैं
exactly.
या इनकी जो डेली नीड्स हैं उन पे लगाने हैं, या कि मैं एक अच्छी मर्सिडीज गाड़ी ले लूं है ना। तो मैं मर्सिडीज गाड़ी उस वक्त तक नहीं लूंगी जिस वक्त तक मेरे पास पूरा हिसाब है कि जी और 4 या 5 या जो 6 साल बच्चे के हैं वो इसकी एजुकेशन आराम से गुजर
जाएगी। रिपलिंग इफेक्ट है।
हाँ रिपलिंग इफेक्ट है। अच्छा उसी तरह अगर मेरे घर में रेनोवेशन चाहिए भी
हाँ।
तो मैं कहूंगी कि नहीं चलो अभी चल रहा है, अभी चलने दो, अभी चलने दो, क्योंकि ग्रोसरीज इतनी महंगी हो गई हैं, बाकी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। फिर अगर हम पैसे हैं भी बैंक में, जैसे आपने कहा 5,000 पड़े भी हुए हैं, बड़ी गाड़ी नहीं हम ले रहे, उसकी वजह यह है कि गैस की प्राइस इतनी ऊपर चली गई है, तो हम कह रहे हैं कोई बात नहीं है, पुरानी भी हो गई है, छोटी भी है गाड़ी, तो चलने दो इसको,
चलने दो।
तो उससे ये सारी चीज से क्या होता है, अनसर्टेनिटी
जो है ना, दैट क्रिएट्स मोर इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन। और उससे क्या होता है, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत नीचे आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है ना। तो बस ये चीजें जो हैं ये खतरे में नाक जरा हैं। इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं पील रीजनल पुलिस के स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के अंदर जी, उन्होंने एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है उसको अब चार्ज किया है, और उसके उसके लिए इसलिए चार्ज उसको किया है क्योंकि 49 ईयर्स इनकी एज है, कोई इतनी ज्यादा नहीं है। एक लड़का था 17 साल का, उसने जी इनको हायर किया कि जी आप आके मुझे सिखाएं वो गाड़ी चलाना सिखाएं, और जिस वक्त हम ड्राइविंग सिखाएं, और वो जिस वक्त उन्होंने कहा कि ड्राइविंग सिखाएं, तो वो जब इनके पास आया तो उस लड़के का कहना है कि इन्होंने मेरे पे सेक्सुअली मुझे असॉल्ट किया। तो अब जो है इनको पकड़ लिया है, इनको अरेस्ट किया और चार्ज किया। इनका नाम है मनीष माइक भरद्वाज। तो ये जो मनीष माइक भरद्वाज साहब जो हैं, ये अब इनको कोर्ट के सामने जो है लाया जाएगा 22 अगस्त 2022 को। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि ये और भी कुछ विक्टिम्स हो सकते हैं, और उन्होंने कहा है उन सबको कि भई आप सामने आए, एंड दे कैन कॉन्टैक्ट स्पेशल विक्टिम्स यूनिट एट 905-453-2121 एक्सटेंशन इज 3460, या कि आप क्राइम स्टॉपर्स को बता सकते हैं 1-800-222-8477 पे।
एग्जैक्टली
तो ये जनाब ये भी बीमारी जो है, ये बीमारी भी बहुत बढ़ती जा रही है।
ये सारा ही मेंटल इफेक्ट,
मेंटल इफेक्ट्स है। हाँ जी हाँ जी, ये वो है। अच्छा WTO की जी, यानी WHO नहीं, WTO की जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 4-day इवेंट चल रहा है जिनीवा के अंदर, और वहां पे एक काउंसिल है उसने कनाडा को, जिसका के नाम है काउंसिल ऑफ कैनेडियंस, उसने ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट को कहा है कि प्लीज आप WTO को कहें कि ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वैक्सीन के वो उठा ले। उससे क्या होएगा कि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटा लेते हैं तो फिर वो जो दवाई या वैक्सीन होती है वो जेनरिक हो जाती है, वो फिर पेटेंट नहीं रहती। तो जिस वक्त वो जेनरिक हो जाती है तो फिर हर कंट्री अपनी नीड के मुताबिक जो है वो दवाई को बना सकता है तो या वैक्सीन को बना सकता है,
अफोर्डेबल होगा ना,
अफोर्डेबल। तो वो कहते हैं जी ना सिर्फ वो अफोर्डेबल होएगा बल्कि हर कंट्री अपनी नीड को खुद से भी पूरा करेगी।
सही।
तो उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे कंट्री से आए, उसमें बहुत सारी चीजें जाया हो जाती हैं और वो जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखेंगे कि ये आज इन्होंने लेटर लिखा है ट्रूडो साहब को, तो अब देखेंगे कि उसका जवाब जो है वो क्या देते हैं। फोर्ब्स मैगजीन की मजद भाई आज बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मुझे ये अब नंबर्स इतने समझ नहीं आते तो इसलिए मैंने बहुत इसकी डिटेल्स नहीं लिखी, लेकिन अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं इफ यू आर इनटू क्रिप्टो करेंसीज तो दे हैव गिवन अ ह्यूज यू नो ब्रेक, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स उन्होंने आज बताए हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो मार्केट है ये सारी क्रिप्टो करेंसीज की $1 trillion से नीचे आ गई है, ये इतना ज्यादा डीप हो गया है ये क्राइसिस। और वो कहते हैं जी कि मार्केट तकरीबन क्रिप्टो करेंसीज की जो है एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस की वजह से बिल्कुल कलैप्स कर गई है, और वो कह रहे हैं ये दूसरी बार हुआ है 2 महीनों में। यहां पे जो वेबसाइट्स हैं जो कि बड़ी जो डील करती हैं इनके साथ, एक तो है स्टेबल कॉइन टेरा, उसने कहा जी कि मेरी जो ट्रेडिंग है वो $22,600 से नीचे आई है और जो है विच इज डाउन 17%। और इसी तरह इथीरियम जो है वो भी एक बहुत बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी में जो होती है करते हैं डील करते हैं, वो कह रहे हैं जी मेरी जो ट्रेडिंग है 20% से नीचे आई है। सेल्सियस जो है उसने कहा है कि मैं तो कंप्लीट बैन लगा रहा हूं इस वक्त कस्टमर्स के विड्रॉल्स के ऊपर, बिल्कुल कोई विड्रॉ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कह रहा है कि हालांकि आपको पता है इनकी बेस कितनी बड़ी है, हाँ सेल ऑफ हो गया, क्योंकि आपको पता है इनकी कितनी बड़ी बेस है, 1.7 मिलियन कस्टमर्स हैं इसके इथीरियम के, सेल्सियस के। तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे यूजर्स को अपने फंड्स निकालने के लिए, और इतनी अनसर्टेनिटी है कि वो कह रहे हैं जी कि अगर उनको कोई पूछ रहा है वो कह रहे हैं जी हमें कुछ नहीं पता हम कब आपको इजाजत देंगे।
अब देखें ना कि हाइट जो है इसकी समर अराउंड सिर्फ फॉर इंस्टेंस $66,000 तक क्रिप्टो करेंसी गई थी
जी, जी
है ना, हाँ। मगर आज सुबह अगर आप देखते हैं तो 22,000 पे आ गई, जस्ट इमेजिन दैट फ्रॉम 66,000 to 22,000 now I think is closed at 23,000, मैंने देखा नहीं है कुछ मगर 23,000 के करीब करीब में जाके क्लोज हुई है, which is amazing,
nothing
yeah और जितनी क्रिप्टो करेंसीज के जितने भी ये बायर और सेलर्स थे उन्होंने तो दे आर टेकिंग इट टू देयर हेड।
बिल्कुल ऐसे। अच्छा जनाब, आज जो है ये एक मेजर स्टोरी थी, और ये जितने भी दो बड़े अखबार हैं अमेरिका के, एक तो वाशिंगटन पोस्ट एक न्यूयॉर्क टाइम्स, इनकी जो थी मेन हेडलाइन थी ये, एंड दिस इज अबाउट, हम आपको बता रहे हैं लास्ट वीक से कि जो January 6 के जो ऊपर जो राइट्स हुए थे उसके ऊपर कैपिटल हिल के ऊपर, तो उसके ऊपर एक पैनल बिठाया गया था टू फाइंड आउट के जी ये क्या हुआ था वहां पे उस दिन, वो तो उसका आज सेकंड डे था, वो पैनल जो था अपनी हियरिंग जो था वो सुन रहा था, और उसके लिए उन्होंने जो है बिल बार से पूछा, तो बिल बार ने कहा जी कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब के आसपास जो है वो सारे पागल लोग थे, ट्रंप साहब के बहुत सारे एडवाइजर्स, उन्होंने आज बताया इसको पैनल हियरिंग जो चल रही थी कि हम उसको बता रहे थे कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ ट्रंप साहब, बिल्कुल सही गिनती हुई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो बार बार कह रहे थे दीज इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन, तो हम उनको बता रहे थे कि ये ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें आज सबसे बड़ा धचका है पैनल को क्या लगा है, ये जो हियरिंग कर रहा है January 6 की, इसमें एक इनके एक्स कैंपेनर थे ट्रंप साहब के मैनेजर बिल स्टीपियन, पहले तो उन्होंने कहा जी कि मैं आ रहा हूं और मैं करूंगा, उसके बाद इन्होंने मैसेज भेज दिया कि नहीं मेरी एक पर्सनल इमरजेंसी है तो मैं नहीं आ सकती, तो जब उन्होंने पर्सनल इमरजेंसी पूछी उन्होंने कहा जी क्या पर्सनल इमरजेंसी है, वो कहती है जी कहता है जी मेरी बीवी जो है वो लेबर में है तो आज मैं नहीं आ सकता। तो इनकी जो कोई पुरानी फिर स्टेटमेंट्स थी वो ये लोग सुनाते रहे हैं, और उसके बेस पे भी इन्होंने ये देखा है कि ये जो मॉब था जिसको कि इन्होंने प्रोवोक किया अपनी बातों की वजह से, लोग उनके पास आसपास थे जो उनको मना कर रहे थे कि ट्रंप साहब ये ना करो आप, तो भरल जी, अब ये जब सामने आएंगे बिल स्टीपियन, तो अब ये पता चलेगा और
डिटेल्स. थिंग्स आर गेटिंग वेरी सीरियस नाउ.
वेरी सीरियस, वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि हियरिंग शुरू हो गई है ना जी.
हम सिर्फ अपने मुल्कों की बात करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वहां पर जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जैसे ही उसकी टाइम खत्म होता है तो उस पर केसेस शुरू हो जाते हैं. और फिर अब ये देख रहे हैं, ये इतनी बड़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट को वो एक्यूज कर रहे हैं कि इन्होंने जो है क्रिएट किया.
वही तो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी सालों से वो उन्होंने खराब की. और आप ये देखें, ये ऑर्डिनरी वो पैनल नहीं है, ये यूएस कमेटी जो है उसका, ये हाउस कमेटी जो है ये उसका पैनल बैठा हुआ.
एग्जैक्टली.
तो दिस
इज द लॉ मेकर्स.
हाँ, दे आर द लॉ मेकर्स ना. तो ऐसे है. अच्छा जनाब, यूक्रेन जो है उसकी हालत अब खराब होती जा रही है, क्योंकि अब जो आज की रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन के काफी ईस्टर्न हिस्से के ऊपर, पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी तरह से जो है रशिया काबिज होता जा रहा है. और अभी तक तो सारी जो है वो उसने पूरी अपनी फोर्स यूज भी नहीं की है, तो भी वो होता जा रहा है. यहां पे जो इसके इलाके में, ये जो सेवरल डॉन्ट्स के जो इलाके हैं वहां पे कह रहे हैं जी काफी सारे जो ब्रिजेस हैं वो यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं रशिया ने. और उसके साथ सबसे बड़ा जो मुश्किल आ गई है वो ये है कि जो लोग भागना चाहते हैं यूक्रेन से, या सिविलियंस है जिनको ये लोग खुद भी निकालना चाहते हैं, वो अब स्टक हैं वहां पे, स्टक हैं क्योंकि कोई वहां पे नहीं आ जा सकती. अच्छा, अब जब ये आना शुरू हुआ और ये लोकल गवर्नर जो है शेरल गाइडा, उसने जब ये बातें करनी शुरू की, तो उसके ऊपर जो है ये मेक्सिको के प्रेसिडेंट जो है आंद्रे लोपेस ओब्राडोर, वो बड़े भड़क गए हैं. वो कहते हैं, उन्होंने आज कहा, नाम तो उन्होंने ना यूएसए का लिया ना ही उन्होंने नेटो का लिया, लेकिन उन्होंने बड़ा हिट किया ये नेटो की पॉलिसी को, जो इन्होंने एनकरेज किया है यूक्रेन को कि तुम रशिया के साथ जाओ, गो हेड एंड वॉर. और उनके एग्जैक्टली ये वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इमोरल है जो हरकत की है. उन्होंने कहा जी कि हम, हालांकि जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब वो हुई थी हाउस कमेटी, वो जो बैठे थे ये सारे यूरोपियंस, और इन्होंने कहा था कि आपने कंडेम करना है रशिया, कंडेम किया था, लेकिन इसके बावजूद रशिया ने कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए हैं रशिया के अगेंस्ट, सॉरी मेक्सिको ने रशिया के अगेंस्ट कोई सैंक्शंस नहीं लगाए हैं. अच्छा, अब प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं आपने पता क्या काम किया नेटो को और यूएसए को, कह रहे हैं आपने पता क्या काम किया है, आपने उसको कहा है कि वी विल सप्लाई वेपन्स एंड यू विल सप्लाई अस डेड. और वो कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका नहीं था, आप उसको पैसे भी दे रहे हैं, वेपन्स भी दे रहे हैं, वो और ज्यादा जोर लगा रहा है रशिया के खिलाफ, तो आपको कोई ऐसा चीज नहीं नजर आ रही थी कि जिसमें आप ये वॉर रोक सकते. तो हमने कब कहा था माजिद भाई, ये हमने आज से 3 महीने पहले जब वॉर शुरू हुई थी, हमने उसी वक्त कह दिया था कि इनको, इस छोटे मुल्क को इस वॉर में नहीं धकेलना चाहिए था.
नहीं, 100%.
हाँ, ये बात है ना, हम तो 3 महीने पहले की प्रेडिक्शन करते हैं ना. तो आज एग्जैक्टली उन्होंने मुझे, आज ये पढ़ के स्टोरी इतनी वो हो रही थी, मैंने कहा ये तो हमने पहले ही कह दिया था कि क्यों उसको पुश किया एक छोटे मुल्क को रशिया जैसे. जिन अभी वो कह रहे हैं जी, आज की जो रिपोर्ट्स आई हुई है सारे ये इसके अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ये सारों के अंदर, अभी तो वो पूरा जोर नहीं लगा रहा रशिया अपना. यानी पूरे जोर का क्या मतलब है, पूरे जोर का मतलब है न्यूक्लियर अपनी जो ताकत है वो नहीं इस्तेमाल कर रहा है. एक बम उसने गुराना है, छोटा सा टिड्डी जितना मुल्क है उसने उड़ जाना है. तो अभी तो वो ट्रेडिशनल वॉर ही कर रहा है. तो और उस ट्रेडिशनल वॉर में भी अपने बहुत सारे वेपन्स जो हैं, हाई एंड वेपन्स जो हैं, जो कि वो देता है इंडिया वगैरह को, वो तो अभी तक उसने यूज ही नहीं किए, यूज नहीं किए. तो ये आज उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ये उन्होंने हिट किया है इनको. रॉयटर्स की आज एक स्टोरी है जी, आपको पता है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके जो डायरेक्टर हैं विल्फ्रेड वैन, ही इज द डायरेक्टर ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम एट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. इसके अंदर आज उन्होंने कहा है, अगेन ये थिंक टैंक है माजिद भाई, ये देखें पार्ट ऑफ थिंक टैंक है, ये कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर जो वॉर है उसका जो है खतरा बहुत बढ़ गया है. पायन कितने पैसे लिए आपने, ये तो हमने पहले कह दिया था, जिस वक्त यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी हमने उसी वक्त कह दिया था गलत किया, आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकते हैं. कितनी हमने बातें कही थी, हमारी बातें सुन के तो नहीं गया आपने बातें. हाँ जी, तो ये इसने कहा, उसने कहा जी फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कोल्ड वॉर ये इतना ज्यादा खतरा पैदा हो गया है, और इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जो है चीजें जा रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. इन्होंने कहा जी कि ये इनकी जो रिपोर्ट है एक आई है, और उसके अंदर इन्होंने सारी वो जो है डिटेल्स दी हैं कि ये किस तरह से जो है ये काम करता है. रिस्पांस फ्रेमवर्क जो इन्होंने बनाया है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो 2022 ईयर बुक इनकी आई है, जो उस ईयर बुक के अंदर लिखा हुआ है, आमिर वो जरा बुक्स दिखाएं, ईयर 2022 ईयर बुक्स जो है जो आई हैं, तो उसके अंदर इन्होंने सारी डिटेल्स आज की हैं. उन्होंने कहा जी कि 5,977 जो हैं वॉर हेड्स हैं, और ये यूएसए से रशिया के पास ज्यादा हैं। ये कहते हैं जी कि यूएसए और रशिया, मजद भाई कैन यू इमेजिन, ये जो आज सिप्री की आज ये जो आई है ये कह रही है कि ये जो दो कंट्रीज हैं रशिया और यूएसए, इनके पास वर्ल्ड 90% वॉर हेड्स हैं। आप सोचें, और फिर कह रहे हैं जी चाइना तो तीसरे नंबर पे है, जिसको बेचारे को ऐसे ही बदनाम कर रहे थे, चाइना तीसरे नंबर पे है, चाइना के पास तो 300 न्यूक्लियर जो है न्यू मिसल सिलोज और ये चीजें हैं। यानी रशिया का आप नंबर देखें मजद भाई 5,977, आप देखें। तो वो कह रहे हैं जी हालांकि ये नंबर जरा नीचे आया है जो, क्योंकि लोग जो है अब कंट्रीज यानी कि वो अब कम स्पेंडिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो है ये जनवरी 2022 में 12,705 पे आ गया था, क्योंकि लोगों को ज्यादा जाहिर है कि कोविड पे स्पेंड किया और जो डिफेंस स्पेंडिंग थी नीचे आई। जनवरी 2021 में ये थे 13,080 से ऊपर थे ये, तो नीचे तो आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो दो ये बड़े जो दो मुल्क हैं ये बिल्कुल अपने वॉरहेड्स जो हैं ये कम कर नहीं कर रहे हैं। तो ये और इन्हीं दो के बीच में ठनी हुई है, और साथ में उन्होंने चाइना को भी जो है वो ठोका हुआ है साइड पे। तो अब अगर ये तीनों आ गए तो इनका बड़ा डर है कि ऐसा ना होए कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए मुल्क में। तो वो कहते हैं जी ये बड़ा हमें खतरा पड़ गया। अच्छा जी, ये अब हम आपको बताना चाहते हैं, फिनलैंड बेस्ड ये जो सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर है जनाब, इसने बताया है कि आप तो दीवार के साथ लगा रहे हो रशिया को, लेकिन ओनली इन 100 डेज ऑफ वॉर विद यूक्रेन, कैन यू इमेजिन, रशिया हैज अर्नड 98 बिलियन यूएस डॉलर्स ऑन इट्स फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स। कैन यू इमेजिन, आप उसको किनारे से लगा रहे हैं, दूसरी दुनिया उससे खरीद रही है और वो पैसे बना रहा है अपना,
और चाइना इज द बिगेस्ट बायर,
चाइना एंड इंडिया
द बिगेस्ट बायर्स।
तो वो कहते हैं जी कि अभी तो रशिया जो है उसने पूरी तरह से अगेन अपना ऑयल पूरी तरह से बेचना भी नहीं शुरू किया, और ये फिगर्स आ गई हैं, और वो कह रहे हैं जी कि रशिया इस वक्त ईयू को 40% गैस दे रहा है और 27% इंपोर्टेड ऑयल दे रहा है। तो आप जो हैं आप कैसे सोच रहे हैं कि उसका ऑयल और गैस आप बंद कर दोगे करोगे तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी।
सही,
अच्छा जी, ये उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा जी कि कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपने रोका तो दूसरे लोग उससे खरीद रहे हैं। ये भी हमने खबर बताई थी जी कि ये हमारे सारे जो यूरोपियन फ्रेंड्स हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं, पहले तो यूएई और सऊदी के कहने पे कतर को दीवार से लगाए रखा, फिर अब जब अपनी जो है वो पसूड़ी पड़ी हुई है तो अब जी कतर के जाके सदके ले रहे हैं, उनकी बलाएं उतार रहे हैं। अच्छा, अब जनाब ये जो फ्रांस की टोटल एनर्जीज वाले हैं ये अब कतर में पहुंचे हुए हैं, और ये कतर एनर्जी के साथ जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है ये एलएनजी जिसको हम बोलते हैं आम जबान में, उसके ऊपर इन्होंने डील किया, और कतर को कहा है कि तुम्हारा जो नॉर्दर्न फील्ड ईस्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है विच हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसमें हम जो है आपके साथ हिस्सा बन रहे हैं। ये जो है इसके मुताबिक जो ये प्लान है इसके अंदर 30 बिलियन यूएस डॉलर्स लगाएगा कतर एक्सपेंशन के लिए, और ये साद अल काबी जो हैं ये इसके कतर इंजीनियरिंग एनर्जी के जो प्रेसिडेंट हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी भी हैं कतर के, उन्होंने कहा जी कि ये हमारे अब जो सिग्नेचर्स हैं ये नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे। इसमें जो टोटल एनर्जीज के सीईओ हैं पैट्रिक बोएन, उन्होंने कहा जी कि 25% ऑफ वन ट्रेन जो है हम इनसे लेंगे, और वन ट्रेन का मतलब है एक जो है हिस्सा जो विच इज ह्यूज वो इनसे हम लेंगे, जो कि आता है 77 मिलियन टन्स पर एनम जिसकी के कैपेसिटी हो सकती है, और ये बढ़ा सकता है कतर उसको 126 टन्स पर एनम पे बाय 2027।
एंड दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट,
यस दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, स्मार्ट इज स्मार्ट बीबुल, ठीक है जी। तो ये इनको पता था कि इन्होंने हमारे पास आना है और हमारे साथ ये जी डीलें हो रही हैं इनके साथ कतर के साथ। द वायर की आज एक स्टोरी, और ये अगेन बहुत ही आई ओपनिंग है, और इसके अंदर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं श्रीलंका के एक मिनिस्टर ने। अच्छा जी, ये एलिगेशंस कैसे लगे और क्या लगे, ये जो एलिगेशंस हैं जो कि इन्होंने हेड ऑफ श्रीलंकन इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इनको चूंकि ये जो क्राइसिस अब चल रहा है उसके ऊपर सारे मिनिस्टर्स को बुलाया जा रहा है और बिजली तो बिल्कुल ही नहीं है, सारा अंधेरे में पड़ा हुआ है बेचारा मुल्क, इनको बुलाया गया और इनसे पूछा गया कि पायान आप बताओ मुल्क अंधेरे में क्यों है, तो ये डील्स जो है क्यों नहीं आपने सस्ती की, क्यों नहीं सही लोगों से की, क्यों मुल्क के अंदर इतना क्राइसिस आ गया है। इन्होंने जी आके कहा कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजापक्षे, उन्होंने मुझे खुद से बुलाया अपने पास और उन्होंने मुझे कहा कि अलेजली मोदी जी ने मुझे कहा है कि तुमने ये पूरे का पूरा 500 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट जो है ये तुमने गौतम अदानी के अदानी ग्रुप को देना है। तो मैंने उनको कहा जी कि ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है और मैं तो सिर्फ हेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हूं, जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री है वो इसको करेगी। तो ये राजापक्षे साहब ने कहा कि नहीं, तुम मिनिस्ट्री में जाओ और तुम उनको जाके कहो कि प्रेसिडेंट ने मुझे कहा है कि अलेजली मोदी जी मुझे कह रहे हैं कि ये सारे का सारा प्रोजेक्ट तुम अदानी ग्रुप को दो। अच्छा, इसने ये बात जी, इसका नाम है ये जो इनके जो सिलोन इलेक्ट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है एमएमसी फर्डिनेंडो, फर्डिनेंडो साहब ने दो दिन पहले ये बात की, आज उनको फिर से जब फर्दर हियरिंग के लिए बुलाया गया तो उन्होंने यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बहुत इमोशनल हो गया था, मैंने झूठ बोल दिया। आया ना, इतना बड़ा एलिगेशन एक इतने बड़े मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर आप लगा रहे हैं और अपने मुल्क के प्रेसिडेंट भी आप लगा रहे हैं और आप इमोशनल कैसे,
समथिंग बिहाइंड इट
ऑफ कोर्स, आप कैसे इमोशनल हो गए भाई और ये आपने इतने बड़े एलिगेशंस कैसे लगाए। तो अगर तो ये झूठ है तो आई मीन आई वुड से कि इंडिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए इस आदमी के खिलाफ, और अगर ये झूठ नहीं है तो फिर ये बड़े आईब्राउज रेज करने की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के अपने अंदर लोग जो है वो कहते हैं कि अलेजली ड्यूरिंग दिस पीरियड जब से बीजेपी आई है तो दो ही लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, एक अंबानीज और एक अदानीज, क्योंकि इनके बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं मोदी जी के साथ।
सही,
तो ये जनाब आज की काफी जो है बड़ी खबर रही। अच्छा जी, बांग्लादेश के अंदर बहुत ही फनी आज एक स्टेटमेंट आई है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं हसन महमूद साहब। आपको पता ही है कि बांग्लादेश के अंदर भी अब रिसेंटली एक तीन चार दिनों से बहुत ज्यादा ये जो दो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा न खास्ता शान में गुस्ताखी की है तो उसके ऊपर सारी दुनिया में हो रहे थे, तो बांग्लादेश को अभी जाग आई है थोड़े दिनों से, तो वो बहुत मैसिव लेकर वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, उसके ऊपर जी आज इन्होंने शायद मेरे ख्याल में बहुत अंडर प्रेशर आके इन्होंने ये बयान दिया कि नामूस रसालत के बारे में हम कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और ये जो निकल रहे थे बहुत सारे प्रोटेस्ट हिफाजत इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही थी, साथ ही उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा लेकिन हम अननेसेसरली ये जो है कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं मुल्क के अंदर या इंडिया के साथ,
मतलब करे भी ना करे।
हाँ पायन, मतलब कहना की चाह रहे हो कि कंडेम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर कंडेम कर रहे हो क्योंकि इन्होंने ये हिफाजत इस्लाम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कहा है कि आप इंडिया की गवर्नमेंट के साथ इसको उठाओ और इसको कंडेम करो, एक आप कह रहे हैं हाँ जी हम कंडेम करते हैं लेकिन हम इसको फ्लेयर अप नहीं करना चाहते चीज को, भाई क्या मतलब है आपका, आप बताओ ना, सच बोलना लोगों ने छोड़ दिया मैंने देखा है। तो ये जी उन्होंने कहा। अच्छा जी, आज हिंदुस्तान के अंदर भी काफी फायरवर्क्स देखे गए, उसकी वजह ये है कि हमने आपको बताया था वीकेंड पे कि जो ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसने राहुल गांधी जी को जो कि कांग्रेस के लीडर हैं उनको बुलाया है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, उनको कहा था कि मंडे को आप आगे जवाब देंगे, तो ये वहां पे गए 9 घंटे तक ये इनकी ग्रिलिंग करते रहे। ये है किस्सा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो के जिसको कि जिसमें कि हमको इररेगुलरिटीज मिली हैं जिसको के चलाता है पार्टी प्रोमोटेड यंग इंडियंस, उनका अपना जो है वो ओन करते हैं इस पेपर को। तो इनको पहले बुलाया गया सुबह 11:10 पे, फिर इनको ब्रेक दी गई, फिर इनको बुला लिया गया। तो उस होते हुए ये भी हमने बताया था वीकेंड के ऊपर कि कांग्रेस ने कहा था कि हम सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह का मतलब होता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे लीडर जो है इसको आप पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये काफी यहां पे जब इनको पकड़ के लेके गए और 9 घंटे तक ग्रिलिंग होती रही तो कांग्रेस के सारे जो वर्कर्स थे वो जो थे बाहर बैठे हुए थे। अच्छा, अब जबकि इनकी तो अंदर क्वेश्चनिंग हो रही थी ना जो राहुल गांधी जी की है, बाहर क्या हो रहा था अलेजली कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन चौधरी और जो इनके बाकी के जो लीडर्स हैं जैसे एमपी शक्ति सिंह गोबिल और एमपी प्रमोद तिवारी और केसी वेणुगोपालन, हद तक के जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे पुराने पी चिदम्बरम, उसके बारे में जब सत्याग्रह मार्च पे निकले हैं लोग तो उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर तशद्दुद किया। दिल्ली की पुलिस ने इस चीज का जो है खुलासा किया। आज कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन जो है रणदीप सुरजेवाला ने, उन्होंने कहा जी कि इनके साथ इंतहाई बदतमीजी की, इनके सर फाड़े और खासतौर पर पी चिदम्बरम साहब की एनके उठा के नीचे फेंकी, उसको तोड़ा, उसको जो है उनको तंग किया और मारपीट की। और वो पूछ रहे थे आज सुरजेवाला साहब कि क्या ये डेमोक्रेसी है, इस मुल्क की डेमोक्रेसी ऐसे चलती है, हमने तो ना कोई तोड़फोड़ की है ना कुछ किया है, एक पीसफुल हमने मार्च निकाला है और हम जो है अपने जो लीडर है उसके उसको हम कंडेम कर रहे हैं कि जी आपने जिस तरह से गलत पकड़ा है, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने आज कहा है कि ये मोदी जी की जो गवर्नमेंट है ये इसको हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा जो कुछ ये डेमोक्रेसी को ट्रैम्पल कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इनके, यही कांग्रेस के जो सपोर्टर्स आए हुए थे सड़कों पे, इनको पकड़ के आज जेल में डाला गया है। उसके ऊपर भी सुरजेवाला जी का बहुत सारा कंसर्न था, उन्होंने कहा भी इनको क्यों पकड़ा है, क्योंकि ये जो कांग्रेस के जो अपने झंडे थे और जो इनके नेशनल फ्लैग्स थे ये लोग करके बाहर खड़े हुए थे, और इन्होंने कहा जी कि इन सब लोगों को मारा पीटा हमारे जो है वो लीडर्स को। अब इनमें से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग पी चिदम्बरम जो है उनको अब एयरलाइन फ्रैक्चर आ गया, ऐसे मारा है पुलिस ने, तो उसके ऊपर आज इन्होंने सुरजेवाला जी जो है उन्होंने काफी हंगामा मचाया। द प्रिंट की एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज रिटन बाय उपमन्यु त्रिवेदी। उपमन्यु त्रिवेदी जी कहते हैं, क्योंकि ये एक इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, ये NYU स्टर्न सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, इनकी रिपोर्ट का नाम है मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म वेपनाइज्ड, हाउ यूट्यूब स्प्रेड्स हार्मफुल कंटेंट एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। अच्छा जी, अब ये इस रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क में इन्होंने कहा है जी कि हिंदुस्तान के अंदर जो रूलिंग पार्टी है अलेजली यानी कि बीजेपी, वो यूट्यूब को यूज करती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और हेटफुल जो कंटेंट है उसको, खासतौर पे मुसलमानों और औरतों के खिलाफ ये यूज करते हैं। उन्होंने आज अल्फाबेट इंक का जो गूगल ओन्ड ये वीडियो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इनको आज कहा है कि हम आपको कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं कि ये जो एंटी मुस्लिम रेटरिक है ऑनलाइन और ये जो मुसलमानों के जो राइट्स को ट्रैम्पल किया जा रहा है इसको कैसे रोका जा रहा है, हो जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो कंटेंट जनरेट किया जा रहा है उसके अंदर फिजिकल थ्रेट्स तक दिए जा रहे हैं, तो ये कंटेंट जो है इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके ऊपर भी जो है आज काफी रिएक्शन आया। कराची के अंदर जी जो अजीज भट्टी पार्क है गुलशन इकबाल में, वहां पे एक जो गाड़ियां खड़ी हुई थी बहुत सारी, जो कि वो कहते हैं जी हमने लोगों से इंपाउंड की थी तकरीबन 400 के करीब गाड़ियां स्कूटर, और वो बुरे तरीके से आग के अंदर जो है वो झुलस गए हैं। अच्छा ये देखें जरा गाड़ियों की मजा भाई, गाड़ियों की हालत देखें, ये गाड़ियां थी स्कूटर थे और ये थे। अच्छा अब कितनी फनी बात कर रही है पुलिस यहां पे, जो डीसी ईस्ट है कराची में राजा तारिक हुसैन साहब, वो कहते हैं जी कि ये पास की जो झाड़ियां थी यहां पे आग लगी थी और हमें जैसे ही बताया तो 15 मिनट में हम आ गए। 15 मिनट के अंदर ये 400 गाड़ी जल सकती है माजिद भाई, ऐसे आप सोचें जरा, 400 गाड़ी और स्कूटर और साइकिलें मतलब कागज की थोड़ी बनी हुई है। कहते हैं जी बहरहाल जी हम इधर पहुंचे हैं और कुछ लोगों ने तो ये कहा, मीडिया ने कहा है कि 440 बाइक्स थी, गाड़ियां थी और ये व्हीकल्स थी, कुछ लोगों ने कहा 400 के करीब थी, कुछ ने कहा 440 के, बहरहाल जी 400 से ऊपर आप समझ लें थी। तो वो कहते हैं जी हम 15 मिनट में पहुंच गए थे तो 15 मिनट में ये कैसे इंजर पिंजर तक उनका कैसे हिल गया भाई, अगर आप 15 मिनट में उधर पहुंच गए। बहरहाल जी सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह, उनके जो स्पोक्स पर्सन अब्दुल रशीद चीमा, वो कह रहे हैं जी कि हमने अब आग बुझा ली और बड़ा उन्होंने तीर मारा, उन्होंने कहा जी कोई कैजुअलिटीज यहां पे नहीं हुई है। वाह जी वाह, यानी कि खड़ी हुई गाड़ियों के अंदर भी कैजुअलिटीज होनी चाहिए थे हैं, तो फिर इनको लगता था यानी खड़ी गाड़ी में कोई बैठे होने चाहिए थे लोग, भी खड़ी गाड़ी में क्यों नहीं लोग बैठे थे, इनका ये कहने का मतलब है?
खाली गाड़ियां कंपाउंडेड खड़ी हुई है उस पर आग लग गई है सारी पे, तो लोग कहां से आएंगे?
नहीं नहीं उधर कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, उन्होंने कहा है तो बहुत बड़ा तीर मारा,
कमाल किया,
बहुत तीर मारा है ये सिंध की गवर्नमेंट ने। अच्छा जी पंजाब के अंदर आज जो है बजट पेश किया गया फिस्कल ईयर 2022-23 के लिए, और गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है उनकी फिर से जो है सैलरीज बढ़ा दी गई हैं, कभी कहते हैं जी खजाना खाली है, कभी कहते हैं IMF वाले जो हैं हमको पैसे नहीं दे रहे, हमारे पास स्पेंडिंग के लिए पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो पायान फिर आपने चीफ मिनिस्टर हमजा शरीफ साहब ने आज की जो मीटिंग चेयर की उसमें कहा जी 5% पेंशन में इंक्रीज किया जाए और इसके अलावा जो है 30% सैलरीज को इंक्रीज किया जाए और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाए।
मतलब ये 5-5-10% लोगों के लिए क्या चीज़ है?
कोई चीज नहीं है ना इनके लिए। अच्छा, इन्होंने जो बजट आज पेश किया है पंजाब का 3.226 ट्रिलियन रुपीस का किया है, और ये इन्होंने जो नए इधर फाइनेंस मिनिस्टर बनाए हैं अपने सरदार अवेस लगारी, अगर आपको पता हो कि जो हमारे थे फारूक लगारी साहब जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उनके बेटे हैं ये, तो उनको बनाया, तो उन्होंने जी ये प्रेजेंट किया और वो कह रहे हैं जी कि हमने बड़ा इसमें तीर मारा है, 900 मिलियन जो है हमने वुमेन डेवलपमेंट के लिए लगाया और 19.5 बिलियन लोकल गवर्नमेंट के लिए। अच्छा जी, लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है आपकी? अगर वहां पे कचरे के ढेर हैं और वहां पे बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, नालियां नहीं बनी हुई, सड़कें टूटी हुई हैं, तो लोकल गवर्नमेंट बात जी ये जाहिर है कि अब सॉरी टू से कि ये तो अब फिर उनकी अपनी जेबों में ही जाने के लिए इसलिए इन्होंने पढ़ाए। इसी की तरह जी ये केपी की जो गवर्नमेंट है इन्होंने भी आज पेश किया अपना जो है वो बजट, और इस बजट को पेश किया उनके फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब ने, और इन्होंने कहा जी हम भी 16% सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं, 15% पेंशन इंक्रीज कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, और इसके अंदर जो मेजर चीजें आज इन्होंने अनाउंस की हैं वो 223 बिलियन फॉर फाटा डेवलपमेंट, जो कि उसकी इमरान खान की गवर्नमेंट ने कहा था कि फाटा को डेवलप करें। हेल्थ जो है बजट बड़ी अच्छी बात है, हेल्थ के बजट को इन्होंने इंक्रीज किया केपी वालों ने 55 बिलियन रुपीज पे। एजुकेशन बजट भी हाई किया है 47 बिलियन का, और इन्होंने कहा जी शोहदा पैकेज फॉर पुलिस जो है उसको भी हम इंक्रीज कर रहे हैं और कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये 10% ऑन बेसिक सैलरी जो है वो भी पेंशन फंड में मंथली इनको अब लोगों को नजर आएगी, तो ये इनका है। इमरान खान साहब ने कहा जी कि अगर पाकिस्तान के अंदर फार्मर्स का ख्याल ना रखा गया तो फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बेतहाशा बढ़ जाएगी। वो आज इस्लामाबाद के अंदर फार्मर्स कन्वेंशन से आज एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं फार्मर्स को जिस तरह से तंग कर रहे हैं और जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन पैदा हो गई है रशियन वॉर के बाद उससे दुनिया में फैमिन आ सकता है। पाकिस्तान बड़ा फॉर्चुनेट कंट्री है कि इसके पास बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अगर हमने इन अपॉर्चुनिटीज का सही फायदा लिया क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल बेस है तो हम जो है हमें कभी ये मुश्किल नहीं होगी। लेकिन मैं तो जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है मैं तो सिर्फ प्राइस का राइज देख रहा हूं जिसको कि जो इफेक्ट करेगी डायरेक्टली फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स के पास अगर जो है राइजिंग फ्यूल और उसकी पावर की प्राइस देने के लिए पैसे नहीं होंगे तो फिर वो अपनी फसल बेच के अपनी चीजें कैसे पूरी करेंगे। और उन्होंने कहा जी मेरी गवर्नमेंट में बड़ी फार्मर फ्रेंडली थी और हमने काफी उनके लिए पॉलिसीज बनाई थी। ये तो मजद भाई जुल्म ही हो गया है देखें पाकिस्तान के अंदर। ओ माय गॉड, अगर पूर कंट्री पाकिस्तान का आज नाम जी दुनिया के जो टी लविंग कंट्रीज है ना उसमें से आया है और उसमें बिल्कुल ये टॉप पे जो कुछ चार पांच कंट्रीज है ना उनमें पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान ने जनाब 2021-22 में 83.88 बिलियन रुपीज वर्थ ऑफ टी
चाय बनाई जी,
इंपोर्ट बनाई।
क्या बात है जी,
क्या बात है, मतलब है और देखो
चाय पियो जी, चाय पियो,
दिन में चार चार कप चाय पियो हैं जी,
चाय पियो जी।
13 बिलियन वो कहते हैं जी मोर देन द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो फिस्कल था 2020-21 उससे 13 बिलियन ज्यादा। वो कहते हैं जी कि इसके अलावा पाकिस्तान ने, चलो चाय के ऊपर तो वो कहते हैं हराम किए पैसे, लेकिन बाकी जो अच्छे काम किए वो ये थे कि मेडिसिंस जो थी वो 6 ट्रिलियन रुपीज की मंगवाई थी, 4 मिलियन जो थी साइकिल्स मंगवाई थी, 4.4 मिलियन मोटरसाइकिल्स, 4.3 मिलियन कार्स, ये मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मुल्क में इतनी गाड़ियां बन रही हैं, और 75,000 ऑटो रिक्शा। लेकिन जो लोगों की नजरें उठी हैं वो इस फिगर पे उठी हैं 83.88 बिलियन फॉर टी।
ठीक है,
वाजी वा, क्या बात।
अभी कुछ तो पीना है तो चाय पी लीजिए आप।
अच्छा, चाय पी लो। लिप्टन दी चाय है,
लिप्टन दी चाय पियो।
चलो अच्छा जनाब, आज कराची के अंदर फिर से जो ओल्ड एरिया है टावर के करीब वहां पे जी एक बंदे ने, कुछ लेबरर्स हैं 22 के करीब लेबरर्स जो थे उनको कुछ एक ड्रिंक दिया, वो ड्रिंक पीने के बाद वो बेहोश हो गए। वो जब बेहोश हुए, अनकॉन्शियस हुए, ये कराची के गोडाउन में इसने ये कार्रवाई डाली, तो इनकी हालत जब खराब हुई तो जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स और पुलिस को बुलाया गया उन्होंने इनको सिविल हॉस्पिटल में किया, लेकिन वो आदमी अपना काम कर चुका था जब ये अनकॉन्शियस हुए, तो वो इनके वैल्यूएबल्स और घड़ियां और उसके पैसे और मोबाइल्स लेके गायब हो गया। तो जनाब ये हुआ। यूके की मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है उसने कहा है जी कि केविन स्पेसी 62 ईयर्स उनकी अब एज हो गई है, تو لگتے ویسے بڑے ہیلدی ہیں. تو ان کے اوپر جناب جو سیکشل ہراسمنٹ کے چارجز آئے تھے, 4 چارجز ان کے اوپر لگائے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب تھرسڈے کے دن جو ہے ان کو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ میں حاضر کیا جائے گا, کیونکہ 3 لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے شکایت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے زبردستی ہمارے ساتھ سیکشل اسالٹ کیا ہے, تو اس کے اندر اور یہ ساری ایویڈنس جو ہے میٹروپولیٹن پولیس نے اس سے پہلے جمع کی تھی, یہ ساری کی ساری ایویڈنس ویسٹ منسٹر میجسٹریٹس کورٹ میں پیش کی جائے گی. بی سی سی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں سورو گنگولی, انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ بی سی سی آئی اپنے کرکٹرز مین ویمن بوتھ اور اپنے ایکس امپائرز جو ہیں ان کے جو ہے بینیفٹس یعنی کہ پینشنز ان کے بڑھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کرکٹرز جو ہیں یہ ہمارا بہت خیال کرتے ہیں, ہمارا نام بلند کرتے ہیں دنیا میں, اور امپائرز جو ہیں ان سنگ ہیروز ہیں, تو یہ جس وقت جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کرکٹ تو پھر ہمارا کام ہے بی سی سی آئی کا کہ ہم ان کا خیال کریں. تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اراؤنڈ 900 پرسنل ول گیٹ بینیفٹ, 75% جو اس میں سے بینیفیشریز ہیں ان کو 100% ریز دی جائے گی. اتنے پہے کما لیے ہیں بی سی سی آئی نے, اتنے پہے کما لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, عالیہ بھٹ صاحبہ جو ہیں وہ لندن میں ہیں, وہ اپنی پہلی ہالی ووڈ کی جو فلم ہے ہارٹ آف سٹون اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہیں ان کے میاں صاحب رنویر کپور صاحب بھی ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی بیگم تو جیسے باقی کے ہمارے انڈین ستارے جو ہیں ہالی ووڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ بھی کیا جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, میں ہندوستان میں ہی خوش ہوں, مجھے ہالی ووڈ کے میرے کوئی ڈریمز نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاسٹ فلم ان کی سنجو آئی تھی 2018 میں, اور اب ان کی نئی 2 فلمیں آنے والی ہیں, شمشیرا اینڈ برہماستر, اور برہماستر تو ابھی اس وینزڈے کو ہی ریلیز ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے اور اگر آپ جو ہیں آپ کے ورلڈ وائڈ آڈینس ہیں تو آپ اپنے ملک میں رہ کے بھی بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں, اپنے کلچر اور اپنے لینگویج کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آڈینسز کے ساتھ ان ٹچ رہ سکتے ہیں. مالا سنہا جو ہیں جی ان کا ایک اولڈ کلپ ایک انٹرویو کا آج سامنے آیا ہے جس میں کہ وہ امیتابھ بچن کی بڑی تعریف کرتے ہوئے دیکھی گیا جا رہی ہیں. وہ کہتی ہیں جی میں اتنا ڈرتی تھی, اتنا گھبراتی تھی امیتابھ بچن صاحب سے اس چیز کے پیچھے کہ جب بھی کبھی میری اور ان کی فلم ہوتی تھی تو مجھے بہت زیادہ یہ لگتا تھا کہ میں فٹافٹ سب سے پہلے جا کے ادھر پہنچ جاؤں گی, لیکن میرے سے بہت پہلے جو ہیں امیتابھ بچن صاحب بیٹھے ہوتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے یہ ہیوملٹی ہے ان کے اندر اور بڑے ریسپیکٹ فل ہیں, اور یہ جو ہے میں کہتے ہیں میں نے کبھی ان کو شودھ گیریاں یا باتیں فضول قسم کی یا ادھر ادھر جو ہے کوئی حرکتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. چپ چاپ اگر شوٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی تھی اپنے کونے میں بیٹھ کے ایک کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے, اور جس وقت شوٹنگ شروع ہوتی تھی تو اس وقت ان کو اپنا سارا انہوں نے ہوم ورک کیا ہوتا تھا تو یہ کرتے تھے. ان دونوں کی ایک فلم بڑی جو مشہور آئی تھی سنجوک آئی تھی 1972 میں, جس کو کہ ڈائریکٹ کیا تھا ایس ایس بالن نے, اور یہ ایک ری میک تھا تیلگو فلم ارو کوڈوگل کا جس کو کہ بنایا تھا کے بالا چندر نے. تو اور بھی بہت ساری فلمیں تھیں. تو وہ کہتی ہیں جی کہ یہ میں بڑا ان سے ڈرتی تھی کہ یہ پہلے ہی آ کے بیٹھے ہوتے تھے صبح سویرے, بڑے پنکچوئل تھے. اینڈ جناب پی سی بی ٹوڈے سیلیبریٹس اور کرکٹنگ لیجنڈ جاوید میاں داد, نن ادر دین جاوید میاں داد جس نے چھکا مارا تھا, آپ کو پتا ہی ہے وہاں پہ جو ہے دبئی کے اندر شارجہ میں چھکا مارا تھا اور پاکستان کو جتایا تھا, اور بھی بے شمار یہ جو ہے زبردست گیم کرتے تھے. ہی واز نون فار ہز ان کنونشنل اسٹائل آف کیپٹنسی اینڈ بیٹنگ. انہوں نے ٹیسٹ کے اندر 8,832 رنز بنائے ہیں, 7,381 ODI رنز بنائے ہیں اپنے 21 ایئر کریئر میں. کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نام جو ہے ہال آف فیم میں آیا ہے, اور یہ آلسو ہی واز دا یگسٹ پلیئر ٹو اسکور ڈبل سینچری ان ٹیسٹ. تو بہت بگ نیم تھا کرکٹ کا یہ, اور ڈرتے نہیں تھے, گھبراتے بالکل نہیں تھے, بالکل نہیں, اور واہ کیا لیجنڈ تھے یہ. مگر جناب کیا ہوا, بابر اعظم نے ہمارے جاوید میاں داد کے ریکارڈ توڑ دیے, جیسے اور لوگوں کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں.
ریکارڈ بنائے جاتے ہیں توڑنے کے
لیے. ہاں جی, انہوں نے توڑ دیا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جو ابھی ویسٹ انڈیز کے خلاف جو میچز ہو رہے تھے جس میں کہ 3rd ODI کے اندر انہوں نے 77 رنز بنائے ہیں آف 93 ڈلیوریز, اس سے انہوں نے جو ہے یہ آگے نکل گئے ہیں اب میاں داد سے ٹو میک موسٹ 50s کنزیکٹولی. ٹھیک ہے جی, اور یہ آگے نکل گئے ہیں راہل ڈراوڈ سے بھی اور مصباح الحق سے بھی, تو اور جو ہے کمار سنگاکارا سے بھی. ان ساروں نے 7 بنائی تھی اور میاں داد نے 8 بنائی تھی, تو اس نے اب 9 بنا لی ہیں. رائٹ. اچھا, ان کی جو ہیں انہوں نے جو ہے بنائی تھی 196 ورسز آسٹریلیا ٹیسٹ میں, 67 ورسز آسٹریلیا پھر ٹیسٹ میں, 55 ورسز آسٹریلیا ٹیسٹ میں, 57 ورسز آسٹریلیا ODI میں, 114 ورسز آسٹریلیا ODI, 105 ناٹ آؤٹ ورسز آسٹریلیا ان ODI, 66 ورسز آسٹریلیا ان T20, 103 ورسز ویسٹ انڈیز ان ODI, اور پھر دوسری جو یعنی کہ جو پہلے میں اور پھر تیسرے میں جو بنائی تھی انہوں نے 77 اگینسٹ ویسٹ انڈیز اگین ان ODI. یہ جو بھی करंटली जो ओडीआईस चल रहे हैं मुल्तान के अंदर पाकिस्तान में। और जनाब दो तो मैच ऑलरेडी ओडीआईस जीत चुका था पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप की है 3-0 से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो कि मुल्तान के अंदर इनके मैचेस हो रहे हैं। और जो तीसरा जो ओडीआई था उसमें जनाब शादाब खान की जबरदस्त किस्म की जो है वो थी, एक तो उसने 50 बनाए और फिर इसने 4 हालांकि जो है वो विकेट्स भी लिए, और पाकिस्तान 43 रन से ही जीता अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मुल्तान के अंदर। और सॉरी इसने 86 बनाए थे, नॉट रियली 50, इसने 86 बनाए थे। और हालांकि जो वेस्ट इंडीज का जो निकोलस पूरन है उसने बड़ा बैश किया पाकिस्तान को, 4 विकेट्स ले ली थी अर्ली पाकिस्तान की, और पाकिस्तान 117 फॉर 5 पे स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर जी ये स्कोर लेकर गए 269 फॉर 9 पे। एंड जनाब पाकिस्तान ने एक और रिकॉर्ड आज कायम किया, एक तो बाबर आजम ने किया है जी, एक पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान हैज पिप्ड इंडिया फॉर द 4th रैंकिंग ऑन आईसीसी ओडीआई चार्ट, और पहले जो था नंबर 4 के ऊपर इंडिया था वेस्ट इंडीज की जीत के बाद, अब पाकिस्तान जो है वो 4th नंबर पे आ गया है। और पाकिस्तान को मिले थे असल में 30 पॉइंट्स जो कि इसको हेल्प भी करेंगे ओडीआई सुपर लीग, जो कि नेक्स्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है उसके लिए भी, तो ये अब इंडिया से एक स्टेप जो है ये अहेड है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, आज जो है मैचेस हैं कतर वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर के, इसके अंदर पेरू और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और इसका जो विनर है वो जाएगा कतर वर्ल्ड कप 2022 खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जो है 5 दफा जो है वर्ल्ड कप में पहुंच चुका है, पेरू अब चाहता है कि वो भी जाए, लेकिन इनके बीच में जो 2 मैचेस हुए थे जिसमें कि ये आगे गया था वो था रशिया के अंदर 2018 में, जब पेरू जीता था और उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो आज का ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है जनाब, कौन अब जाएगा वर्ल्ड कप में।
कनाडा तो अपना तो सही है भाई,
कनाडा से तो कोई हमें टेंशन नहीं है,
कनाडा तो पहुंच गया उधर,
अभी टेंशन नहीं है,
आपस में तुम लड़ते झगड़ते रहो जो कुछ करना है, कौन आएगा कौन जाएगा क्या है क्या नहीं है, अपन तो पहले से उधर है,
उधर ही है हाँ, क्योंकि एटलीस्ट कोई तो वहां पे, क्योंकि ना तो नीले जय जीत रहे हैं, ना टोरंटो एफसी जीत रहे हैं, ना जो है हमारे मेपल लीफे जीत रही है, तो बस हमने कहा चलो किसी को तो जिताओ ना,
कनाडा उधर है,
हाँ कनाडा ऑलरेडी उधर है,
उधर है जी। जाना नहीं आपने कहीं पर,
हाँ जी,
क्योंकि हमने कुछ 2-4 रिस्पॉन्स पैगाम लेने, और इसके फौरी बाद फयाज वेलाना हमारे साथ होंगे और आपकी कॉल्स। 4166201778 हमारा फोन नंबर है, 4166201778 हमारा फोन नंबर है। जैसे हमारी लाइन मिलती है जनाब फयाज वेलाना से तो हम आपकी लाइन भी खोल देंगे। हम अभी ठहर जाए, अबे ओ ठहर जाओ बंदिया पानी पी लो, है ना, थोड़ा सा सबर, और सबर के बाद फिर हम आपकी बातचीत करवाएंगे फयाज वेलाना साहब से।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
मस्जिद इब्राहिम एक फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद कर रहा है जो जून 18 शाम 6 बजे टोरंटो मैरियट मार्कम में होने जा रहा है। इस फंड रेजिंग में दुनिया के मशहूर गेस्ट स्पीकर शेख आला अल सैयद शिरकत करेंगे। मस्जिद इब्राहिम की तामीर को पूरा करने के लिए $600,000 की जरूरत है। आप सबसे गुजारिश है इस नेक काम में अपना हिस्सा जरूर डालें। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए तनवीर सुल्तान 4165663830 4165663830।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज़ वी केयर।
ओ माया मेहंदी रोका या ब्याह दा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 तो लेके 700 तक दी कैपेसिटी, ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनिएंटली लोकेटेड इन बॉन। हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191 416-433-9191
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ $5,000 ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ 92% ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਪਲੱਸ $5,000 ਈਅਰਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜੌਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-836-6974 416-836-6974।
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में जून 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800 416-526-6800।
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेलीटाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मज़ीद तफ़सीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
जी साहब नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड सब 6:45 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, मगर फिर भी जनाब अली आज प्रोग्राम का नाम ही हमने दिया है फड़ो किनो फड़ो जी
फ्याज भाई को।
हाँ जी फ्याज
भाई फयाज भाई जो है ना बड़े वो चीते जर्नलिस्ट बनते जा रहे हैं, मैं अंदर की खबरें देता हूँ ये वो है। बस हमने लोगों को कहा फिर पढ़ लो इना, नप लो इना,
आज नप लो,
आज नप लो,
आज नप लो। फयाज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, और आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और इससे पहले आप शुरू करेंगे या मैं?
नहीं,
मैं
शुरू पूछना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं।
नहीं, 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 मैं शुरू करूंगा, मैं शुरू करूंगा।
अच्छा अच्छा,
मैं जरा पहले ये आपकी आपकी माशाल्लाह बहुत स्टार एंकर पर्सन, न्यूज रीडर, एनालिस्ट एंड ऑल इन वन है, बहुत।
क्या नाम है उनका? मुझे पता नहीं है नाम, नाम क्या?
ऑल इन वन शाजिया बाबर मलिक।
फयाज भाई आपने जो प्रेडिक्शन की है ना उसने आग लगाई हुई है सारे सिटी के अंदर, वो कहते हैं ये क्या गिदड़ सिंगी है इनके पास, पूछो इनके पास क्या है।
अच्छा अच्छा, जो बात है ना आप कह रही है ना कि अपना मैं अंदर की खबरें देता हूँ, मैं नहीं अंदर की खबरें देता।
हाँ।
जर्नलिस्ट का काम ही खबरें देना होता है, जर्नलिस्ट खबर नहीं देगा तो वो फिर करेगा क्या?
तो फिर वो सच्ची कैसे हो जाती है?
और तो हमें कोई काम और आता भी नहीं है।
हाँ।
सही बात।
लेकिन आपकी खबरें सच्ची कैसे हो जाती हैं, ये क्या चक्कर है?
बस वो थोड़ी असल में वजह ये है ना कि हम जर्नलिस्ट लोग जो होते हैं ना, अगर तो हम अपनी जात को अलग करके खबरों को देखना शुरू करें तो हम पहुंच सकते हैं नतीजे पे। हमारा मसला यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली आप देखें तो पाकिस्तान में दो धड़े बन चुके हैं जर्नलिस्टों के। एक जो है वो उसने इमरान खान का ठेका उठा दिया है और दूसरे के पास मुस्लिम लीग नून का पुराना ठेका जो है वो उनका नए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ
रिन्यू हो गया।
हुकूमत में आए हैं तो अब नए दौरे शुरू हो गए हैं, खाते शुरू हो गए हैं। आपको पता है पहली जो उन्होंने जियाफत दी थी उसमें पता नहीं 36 लाख के 40 लाख रुपया खर्च आया था पीएम हाउस में,
36 लाख।
तो वो पुराने जो उनके अपना थे जंग आलूद मुआहदे कॉन्ट्रैक्ट ठेके वो दोबारा नई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बहाल हो गए हैं। और आपने देखा जब तुर्की के दौरे पे गए शहबाज शरीफ साहब तो दौरा अभी शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले इन्होंने कोई 25 करोड़ के इश्तेहार अखबारों को दे दिए। वो भाई खुदा के बंदो उसे वहां पहुंचने तो दो, वहां जाके वो बातचीत करेगा, मुजाकरात करेगा, वापसी पे अगर कोई कामयाब हुआ, कोई दौरा हुआ, कोई अच्छे एग्रीमेंट्स वहां से टर्म्स एंड कंडीशन लेके आ गया
तो फिर आप इश्तेहार दीजिएगा। नहीं फयाज भाई वो असल में बड़ा हिस्टोरिक मौका था क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जिंदगी में पहली बार टर्की एज अ प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, ये बड़ा हिस्टोरिक वाकया था। आपको
नहीं, तो जाने पे ही इश्तिहार देने शुरू कर दिए।
हाँ,
जाने पे ही इश्तिहार देने शुरू कर दिए।
इतना हिस्टोरिक वाकया था, आपने मिस कैसे किए फियाज भाई? आप जैसा बड़ा जर्नलिस्ट कैसे मिस कर सकता है?
और वहाँ जब वो मिल रहे थे प्रेसिडेंट के साथ, तो उनके साथ सलमान शहबाज और हुसैन नवाज खड़े थे। और अब हमारा इससे बड़ा हमारे सिस्टम का मजाक और क्या हो सकता है कि हमारी हुकूमत जो कह रही है, पाकिस्तान में अदालतें कह रही हैं कि जी ये सलमान शहबाज कौन है, ये मतलूब है, ये कहाँ है, और वहाँ हमारी हुकूमत पाकिस्तान बता पा रही कि ये बंदा कहाँ है, हम ढूंढ रहे हैं, हमें बंदा मिल नहीं रहा, और वजीर आजम पाकिस्तान जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है वो उसे तुर्की के सदर से उसका तारुफ करा से मिली है, इनका नाम है सलमान शहबाज, और कोर्ट में आके कहते हैं कि हमें तो नहीं पता ये बंदा कहाँ है, भागा हुआ है, इसका शायद एड्रेस गलत है, असली एड्रेस पे उसे नोटिस भेजें, फिर शायद ये बंदा मिल जाए।
अच्छा, हाँ जी, हाँ जी।
इससे अच्छा, बड़ा और मजाक हमारा क्या हो सकता है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव एक मफरूर इश्तिहारी और मतलूब बंदे को अपना प्रोड्यूस नहीं कर सकता अदालत में, लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट के सामने उसे तारुफ करवा देता है, उसे शाही ज़ियाफ़त में उसे लेके जाता है।
अच्छा अच्छा भैया, चलो छोड़ो पीछे दिया गला, ये मकसूद जो चपरासी है इसका क्या किस्सा है, और आज जो दो बजट्स आए हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, पंजाब और केपी का? जरा पहले मकसूद चपरासी से शुरू करें।
नहीं नहीं, मकसूद जितने लोग मकसूद के हवाले से बात करते रहे हैं, और मैं मुझे उन सब पे इंतहाई गुस्सा है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमारे यहाँ मुल्क में चपरासी का वर्ड बहुत अरसा पहले मतरूक हो चुका था, इसे तर्क कर दिया गया था, और उसके लिए नायब कासद का लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए मकसूद नायब कासद कहा जाए तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में। और अब तो वो बेचारा फौत भी हो गया है, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और उसके गुनाह जो हैं वो उसे माफ करे, अगर वो माफ करने के काबिल हैं। अल्लाह की रहमत तो बेपाया है, बहुत अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, वो माफ कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारे मुल्क को, हमारे सिस्टम को, हमारे लोगों के सिस्टम पे एतमाद को जो नुकसान हुआ है, वो शायद एक मकसूद नायब कासद उसका जिम्मेदार नहीं है, उसमें वो सारे लोग, वो सारा सिस्टम, वो सारे बैंकर, वो सारे हमारे ऑफिसर्स, वो सारे एफआईए के तफ्तीशी जो अब तक इस केस को आगे डालते 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 यहां तक ले आए कि वो बंदा अगले जान में चला गया, लेकिन हमसे ये फैसला नहीं हो सका कि मुजरम कौन है, मुलजम कौन है, किसको सजा देनी है, किसको नहीं देनी, जबकि हमारे कायदे कानून की जो बुक्स हैं उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उसका ये कसूर होगा। और अब मजाक देखें आप, तारीख का मजाक, अनोखा मजाक देखें कि इस वक्त बर्लिन में, न्यू जर्मनी के शहर बर्लिन में फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास हो रहा है, और उसके जो फैटफ के सदर हैं मार्कोस पिलायर, उन्होंने अपने जो उनकी ओपनिंग स्पीच थी फैटफ के इजलास की, उसमें उन्होंने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जंग में गेम चेंज का किरदार अदा करेगी। वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएं, और वो जब ये स्पीच कर रहे थे तो उनके सामने पाकिस्तान की नुमाइंदा हमारी वजीर ममलकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर बैठी हुई थी। अब हिना रबानी खर वहां बैठी क्या सोच रही होंगी कि ये पूरा फैटफ का इजलास जो इस वक्त बर्लिन में जर्मनी में हो रहा है उस पर बात हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की, और मैं इन्हें क्या बताऊं कि हमारे मुल्क का वजीर आजम और हमारे मुल्क का सबसे सूबे का, बड़े सूबे का वजीर आला, वो दोनों उन पे फर्दे जुर्म आयद होने वाली है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ही। क्या कौम है हम, क्या लोग हैं हम, और हम कितने फखर थे, हमें शर्म भी नहीं आती, हम इस तरह के आलमी इजलासों में जाके ढीठ होकर बैठ जाते हैं, और आगे से जो तकरीरें होती हैं, मेरे ख्याल में तो आज हिना रबानी खार का जो है सर शर्म से झुका हुआ होगा वहाँ, कि वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग उनका मेन जो है इश्यू इस दफा 17 जून तक बैठने का जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, आलमी एस्टेब्लिशमेंट भी अब बेनकाब होने वाली है इस सारे धंधे में, कि अमेरिका ने बिहाइंड द डोर कहते हैं कि उसने उन्हें कहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वो अपना निकाल दिया जाए।
अच्छा,
अब अमेरिका इस वक्त, जी अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन किस मौके पे वो ग्रे लिस्ट निकालना चाहते हैं, जस्ट टू प्लीज शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी एंड पीडीएम अगेंस्ट इमरान खान, के इन्होंने इमरान खान के खिलाफ हमारे लिए इतना काम किया है, वहां रिजीम चेंज में हमारी हेल्प की है, तो इसलिए इन्हें इनाम के तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। ये मैसेज अमेरिका ने फैटफ को कन्वे कर दिया है, अब फैटफ ये मैसेज उनका एक्सेप्ट करती है, मानती है या नहीं मानती ये बाद की बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इन्हें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। शायद वो निकालें तो नहीं, लेकिन कम अज कम कुछ नरमी हो जाएगी। लेकिन दूसरा मजाक तारीख का देखें, ये सब कुछ हिस्ट्री में लिखा जा रहा है कि जब वहां हिना रबानी खर स्पीच कर रही होंगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए क्योंकि हमने ये अच्छे काम किए हैं हमारी हुकूमत ने, तो वो जो अच्छे काम 32 पॉइंट्स में से ऑलमोस्ट 27 29 पॉइंट पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिए हैं, मीट कर लिए हैं टारगेट, तो वो किसने टारगेट्स मीट किए हैं? 3.5 साल में इमरान खान ने किए हैं, तो एक्चुअली वो इमरान खान की कारकर्दगी वहां पेश कर रही होंगी नरबानी कर, और रिक्वेस्ट कर रही होंगी फैटफ से कि हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन जो ही वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगी, पाकिस्तान में आएंगी, तो उनका सारा सिनेरियो, सारा बयानिया उनका चेंज हो जाएगा। अगेन शी विल स्टार्ट टॉकिंग अगेंस्ट इमरान खान, क्योंकि हमारे लोगों के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उनका मौकफ कुछ और होता है और पाकिस्तान के बाहर जाके उनका मौकफ कुछ और होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मिफ्ता इस्माइल चंद रोज पहले लेने गए थे IMF से इमदाद, तो उन्होंने जो कारकर्दगी शीट वहां पेश की थी वो सारी एक्चुअली इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी शीट थी। इन्हें तो अभी आए हुए जुमा 8 दिन हुए थे और अभी तो 35 दिन तो शहबाज शरीफ साहब ने इस बात पे लगा दिए कि मेरी कैबिनेट में कौन होगा और कौन नहीं होगा। जब कैबिनेट ही नहीं है तो इसका मतलब है इनकी गवर्नमेंट की तो वो कारकर्दगी नहीं थी, वो कारकर्दगी तो इमरान खान की हुकूमत की थी। उसकी बेस पे ये IMF से तवक्को रखते हैं कि IMF इनकी मदद करे।
अच्छा, ये जो है, एक तो और भी बात बताएं जरा, दो बजट्स ये जो आए हैं पंजाब और NWFP के, इनके ऊपर जरा बात करें। और दूसरा, ये जो जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है तो जो हमारे बीबी भुट्टो साहब हैं वो तो बस लग रहा है सैरों पे ही गए हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या स्पेशल ये डील्स बनाने के लिए गए हैं। पहले ये वॉशिंगटन गए हुए थे, फिर उसके बाद अब जो है वो उधर गए हुए थे टर्की, अब जनीवा, फिर टर्की, फिर अब ईरान जा रहे हैं। तो मतलब ऐसी क्या स्पेशल बात पाकिस्तान जो है इन लोगों से करने जा रहा है जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने नहीं की और इनको चक्कर लगाने का इतना शौक है?
अच्छा, ये जो बिलावल के दौरे हैं, सारा कुछ है ये, जब अमेरिकन्स के साथ, आपको पता है ना कि ये 2-3 हफ्ते वहां बिल्कुल गायब रहा है, तो जाहिर है वहां बैक एंड पे इसकी मीटिंग्स होती रही हैं अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से। तो उन्होंने जब एक आपने उसे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भेजा तो वो ये नहीं देखते कि ये 25 साल का नौजवान है, 35 साल का है या 55 साल का बूढ़ा है, वो तो उसे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लेते हैं ना। अब वहां जब उसने टॉक्स की, बातचीत की, तो वहां उसकी कारकर्दगी पर डिपेंड करता है कि उसकी कारकर्दगी क्या रही होगी। मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, अब तक की उसकी कारकर्दगी एज ए फॉरेन मिनिस्टर कोई इतनी गलत नहीं है, बहुत अच्छी। उसने फॉर एग्जांपल उसने रशिया के इमरान खान के दौरे को डिफेंड किया, उसने कहा ये हमने सोच समझ के दौरा किया था और ये पाकिस्तान का दौरा था। इससे पहले भी
एट द सेम टाइम उसी दौरे पे इसने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था उसको, इमरान खान की गवर्नमेंट को।
अच्छा, लेकिन एज ए फॉरेन मिनिस्टर उसने मेरे ख्याल में वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है अभी तक। अब वो ईरान जा, तो ईरान में भी मैं सोच रहा था कि वहां ईरान के जो अपना हेड ऑफ द स्टेट्स या दूसरे लोगों से जिनसे मिलेगा, ज्यारतें वगैरह तो हो जाएंगी सरकारी खर्च पे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो बात कर रहा होगा तो वो उसे कैसे लेते होंगे कि ये कल का नौजवान जिससे अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, पॉलिटिक्स में आए हुए, ये हमसे इस तरह बढ़ के बात कर रहा है। जितनी मर्जी अच्छी बात करे, जितनी मर्जी बड़ी बात करे, वो बात नहीं होती। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको याद होगा मैं इस्लामाबाद में था जब, तो मैं एक वाला एक मजदूर किस्म का जर्नलिस्ट था, तो मुझे बहुत जल्दी तरक्की मिल गई। आई थिंक एट दैट टाइम 28 ईयर्स ओल्ड और मैं एडिटर बन गया एक कौमी अखबार का इस्लामाबाद में। और मेरे साथ दूसरे एडिटर जो यंगेस्ट एडिटर थे वो फहद हुसैन थे, वो भी एक अखबार के एडिटर बन गए। तो हम दोनों यंगेस्ट एडिटर थे और हम CPNE या APNS की मीटिंग्स में जब जाते थे तो हम जितनी मर्जी है कोई सियानी बात करते थे, लोग हमारी बात को उस तरह गौर से नहीं सुनते थे। और मैं दिल में कहता था कि ये मेरे बाल कब सफेद होंगे और कब ये लोगों को ये यकीन होगा कि वाकई मैं जो बात कर रहा हूँ इसकी मेरी बात में वजन है और मेरी बात गौर से सुन लें। लेकिन वो नहीं सुनते थे, इसलिए कि वो कहते थे ये बच्चा है कल का, इसे अभी तो ये एडिटर बना है, अभी तो ये 2-4, 10-20 साल हमारे बैठ के हमारी कहानियां सुने ना, उसके बाद ये बोले। तो बिलावल जब जाता होगा वहां तो वो जितनी मर्जी है अच्छी बात करे, जितनी मर्जी है वजनदार बात करे, उसे वो अहमियत नहीं मिल सकती। हाँ, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिलावल की लर्निंग अच्छी हो रही है, उसका बार तारुफ हो रहा है दुनिया में, लोग जान रहे हैं, तो शायद उसका अगले इलेक्शन में या उससे अगले इलेक्शन में उन्हें और जरदारी साहब को इसका फायदा होगा। अदरवाइज ये सिर्फ उनकी आनियां जानियां हैं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। प्रैक्टिकली सॉलिड चीज वहां से निकलना मुश्किल काम है। हिना रबानी खर अगर इस एज कंपेयर टू बिलावल, अगर हिना रबानी खर आज अगर फ्रंट पे लीड कर रही होती, वो फेडरल मिनिस्टर होती वजारत खारजा की, मेरे ख्याल में वो बेहतर परफॉर्म करती। एज में उससे बड़ी है, इससे पहले वो वजीर खारजा रह चुकी है और वो अमेरिका की पड़ी हुई है, बहुत अच्छा पाकिस्तान को प्रेजेंट करती है। लेकिन बिलावल के बारे में भी मुझे इस तरह का कोई नहीं है कि बिलावल को बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप कहें कि जी वो कोई आलमी कहीं लॉबिंग कर रहा है, कहीं कोई बहुत बड़े ब्लॉक का गेम कर रहा है, आई डोंट थिंक सो, वो कोई इस तरह का नहीं होगा। आपने दूसरी बजट की बात की थी, बजट केपीके का जो बजट है, आप उस बजट को देखें कि उसमें उन्होंने 15% तनख्वाहें बढ़ाई हैं अपने मुलाजमी, 15% पेंशन की बढ़ाई है और 16% शायद तनख्वाहें बढ़ाई हैं, 15% और 16% है एक तनख्वाह पेंशन उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड बढ़ाई है। इसका मतलब है कि वो इतनी बारीकी से देख रहे हैं कि उन्होंने 1% भी मैटर करता है वहां, वरना वो लमसम कह सकते थे कि दोनों 15% बढ़ा दें या दोनों 16% बढ़ा दें। अगर एक 15 और एक 16 है तो इसका मतलब है वो माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
और फिर उन्होंने हेल्थ केयर में और एजुकेशन में भी बड़े पैसे बढ़ाए हैं उन्होंने।
अब इस हद तक अगर माइन्यूटली एक गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही है तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि पीस ऑफ माइंड है वहां, क्योंकि वहां उनके पास 2/3 मेजोरिटी है, उन्हें ये खतरा नहीं है कि मेरे बंदे शाम को भाग ना जाएं। एज कंपेयर टू केपी के पंजाब में आप देखें वहां क्या धमा चौकड़ी मची हुई है कि स्पीकर जो है अपने परवेज इलाही साहब वो इजलास होने नहीं दे रहे, और उन्होंने वहां ये कहा हुआ है कि जब तक ये चीफ सेक्रेटरी उसको पंजाब के आईजी को और उसको नहीं बुलाएंगे, यहां तलब नहीं करेंगे और हम उनके साथ अपना हिसाब बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले इजलास में उन्होंने हमें मारा था, जख्मी कर दिया था इनको, परवेज इलाही साहब को और उनके एक दो बंदों को, और आसिया अमजद जो चकवाल से एमपी हैं ख्वातीन की नशिस्तों पर, वो बेचारी तो कॉमे में चली गई थी, अब पता नहीं उनका क्या हालत है, लेकिन बहुत सीरियस थी।